दासी, मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है। ना जाने कौन सी घड़ी मैं मर जाऊं। दासी तुम जाओ, महाराज को बुलाकर लेके आओ।
जैसे आएगी महारानी की। महाराज।
कहो दासी, कैसे आना हुआ तुम्हारा?
आपको महारानी जी ने महलों में याद किया है।
मुझे?
हाँ।
महारानी ने महलों में याद किया है?
हाँ।
अच्छी बात है दासी, तुम चलो, हम आ ही रहे हैं।
जो आ गया।
कहो महारानी, हमें किस लिए बुलाया है?
स्वामी, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
कहो कहो, क्या कहना चाहती हूँ?
स्वामी, आज रात्रि को एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न के अंदर बहुत भयानक जंगल दिखा। उस जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़ी रहा करते थे और उनके दो बच्चे भी थे। अचानक एक दिन वो चिड़ी बीमार होके मर गई। चिड़ा दूसरी शादी कर ले आया और उस सौतेली चिड़िया ने उन दोनों बच्चों को बहुत दुख दिया। कहीं ऐसा ना हो स्वामी, मेरे मर जाने के बाद में आप दूसरा विवाह कर लें, मेरे बेटे रूप और बसंत को दुख पहुंचे।
नहीं नहीं, ये सोचना तुम्हारा बिल्कुल गलत है। तुम्हारे मर जाने के बाद हम दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, क्षत्रिय हैं, हमने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही कभी बोलेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमने तुम्हें वचन दिए हैं, इन वचनों के अलावा अगर हम कदम उठाएंगे तो हमारे प्राण भी चले जाए तो हमें दम नहीं। प्रिय
स्वामी,
देखो तुम्हारे अच्छे होने के लिए हमने डॉक्टर हकीम वैद्य लगा रखे हैं, तुम्हारी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। और सपने कभी सच नहीं हुआ करते हैं, सपने सपने होते हैं, इसलिए तुम चिंता को छोड़ो। दासी,
महाराज,
महारानी का पूरा पूरा ख्याल रखें।
जैसे आएगी।
दरबार का समय हो चुका है, मैं दरबार में जा रहा हूँ।
जो आज्ञा स्वामी। दासी।
हाँ महारानी जी।
तुम जाओ, मेरे बेटे रूप बसंत इनको बुलाकर लेके आओ।
जैसे आज्ञा महारानी जी।
प्रणाम माता जी।
ना माता जी।
प्रसन्न रहो मेरे लाल।
कहो माता जी, हमें किस लिए बुलाया है?
बेटा रूप, तुम बड़े हो इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
क्या कहना चाहती हो माता जी? कहो कहो।
सुनो, तुम्हारा भाई बसंत तुमसे छोटा है। देखो, मेरे मर जाने के बाद में तुम अपने भाई बसंत का साथ कभी मत छोड़ना।
हाँ माता जी, ऐसा कभी नहीं होगा। और भगवान ये दिन किसी को नहीं दिखाए माता जी। और संसार में तुम ऐसी बेकी बेकी बातें कर रही हो माँ, इस संसार में हमें माँ का प्यार कौन देगा माँ?
माता जी, आज ऐसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रही हो? माँ तुम्हारे लिए पिताजी में डॉक्टर वैद्य हकीम सब लगा रखे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
बेटा बसंत, हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारे बच्चों से हमें दूर ना रखे। जाओ दासी।
हाँ महारानी जी।
मेरे लाडले देवर धीर सिंह को बुलाकर लेके आओ।
जैसे आएगी।
कहो भाभी साहब, हमें किस लिए बुलाया है? हाजिर हूँ खिदमत में नेक और नाम, अरे क्या थी मेरी इंतजारी, क्या है मुझसे काम? मरहम का हो सवाल तो उतार अपनी खाल दू, अगर वो हुक्म भाभी साहब आपका तो सर काट के कदमों में डाल दू। कहो भाभी साहब, किस लिए बुलाया है मुझे?
देवर, तुम देवर ही नहीं बल्कि मेरे एक पुत्र के समान हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ इस राज्य की बात कहती हूँ।
कहो कहो, क्या कहना चाहती हो?
देखो लाडले देवर धीर सिंह, मेरे मर जाने के बाद में पहला काम तो तुम ये करना कि धारा नगर का ताज तुम रूप के मस्तक पर रखना। दूसरा काम ये माँ और पिता का प्यार तुम ही देना, ये मैं तुमसे कह रही हूँ।
हाँ भाभी माँ, हम तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि एक रोज तारा नगरी का ताज रूप कुमार के मस्तक पे ही रखूंगा। भक्त सब कुछ त्याग देता है लग्न के वास्ते, अरे प्रेमी जन मरते हैं प्रेमिका के वास्ते, इसी प्रकार हम भी अपनी जान की बाजी लगा देंगे बेटा रूप और बसंत के वास्ते।
शाबाश, हम भी तुमसे यही उम्मीद रखते थे। लो देवर, इनका हाथ अपने हाथ में लेके प्रतिज्ञा करो। सुनो देवर, लो हाथ इनका अपने हाथ में, ये दोनों भोले वाले हैं, ये फिक्रा याद रहे, ये मेरे नाजू के पाले हैं।
हाँ भाभी, मैं रूप और बसंत का हाथ अपने हाथों में लेकर के प्रतिज्ञा करता हूँ कि धारा नगरी का ताज रूप कुमार के मस्तक पर रखूंगा और इन बच्चों को कभी किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा।
देखो वो, देखो काली काली डरावनी मूर्ति मुझे बुला रही है, वो मुझे अपनी ओर खींच रही है, कह रही है तुम मेरे पास आओ। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे बसंत से और रूप से मिलूंगी। देखो देवर, वो देखो, वो काली काली डरावनी मूर्ति मुझे बुला रही
है। भाभी साहब,
नहीं नहीं,
हाय माता जी, हाय अंधेरा छा गया, जाता रहा प्रकाश, माँ हमारी चल बसी, अब किसके करे मनास। हाय माता जी,
के भैया कैसी भई, जो जननी कर गई काल, हम तुम दोनों रह गए जीवनी मैया के लाल। माता ने दीनों है दगा, भैया कहाँ अब कीजिए, माता ने दीनों है दगा, भैया कहाँ अब कीजिए, डाली विपत्ति करी तारी ने, अब दोष किसी को दीजिए। जननी तुम्हारी दाक सूरत नैन से चली जाती, कुंवरी तेरे खड़े दोनों, कुंवरी तेरे खड़े कुछ बोले मुख से मातरी,
चाचा जी अब हमें माँ का प्यार कौन देगा। इस संसार में हर चीज मिल सकती है लेकिन माँ कहाँ मिलती है चाचा जी। बेटा रूप, बेटा बसंत, क्यों रो रो के मारे हैं नारे, क्यों रो रो के मारे हैं नारे, क्या जी उठते हैं मौत के मारे। जो सोए हैं सोने के छत खप्पर पे, वो भी तो एक रोज उतारे जाते हैं इसी जमी पे। अरे बेटा, जीने का अंजाम यही है कि एक रोज मरेगा, अरे जो आया है संसार में कुछ करेगा, अरे जीने का अंजाम यही है कि एक रोज मरेगा। इसलिए बेटा रोनो धोनो को छोड़ो, और रूप कुमार तुम बड़े हो, बसंत छोटा है, तुम इस प्रकार रोते रहोगे बेटा तो तुम्हारे रोने का असर बसंत पे बुरा पड़ेगा। इसलिए अपनी माँ का दाह संस्कार करो और रोना धोना छोड़ो।
चाचा जी, अब हमें माँ का प्यार कौन देगा।
हाँ बेटा बसंत, इस संसार का हर प्यार तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा, लेकिन माँ का प्यार तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा मैं तुम्हें अपनी माँ कभी याद नहीं आने दूंगा। मैं इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार दूंगा तुम्हें कि तुम हर प्यार को भूल जाओगे। चलो बेटा, कहो दरबारी क्या कहना चाहते हो?
महाराज
आपके भाई धीर सिंह जी आ रहे हैं, आने दिया जाए। आओ धीर सिंह, किसे आना हो?
भाई साहब
आप तो यहाँ गाने और शराब के नशे में चूर हो रहे हो और महलों में राजमाता का स्वर्गवास हो चुका है, अभी तक आपको कब पता भी नहीं है।
चलो अच्छा हुआ धीर सिंह, बेचारी मौत से झगड़ा कर रही थी।
मैं भी भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था इसका मोक्ष हो जाए तो अच्छा है। आखिर तुम ही बताओ कब तक दुख देखती बेचारी, मर गई अच्छा ही हुआ। लेकिन भाई साहब आपका यह फर्ज होता है कि उसका मर जाने के बाद में एक गज कफन का टुकड़ा तो अपने हाथों से डाल देते उसके ऊपर। भाई धीर सिंह तुम उसे अपनी मां समझते थे, तुम उसके बेटे थे, तो क्या एक गज कफन का टुकड़ा तुम नहीं पहना सकते थे?
हाँ भाई साहब, मैंने तो अपना पूरा कर्तव्य निभाया है।
धीर सिंह तुम समझदार हो, हमने तुम्हें शस्त्र विद्या राज विद्या हर प्रकार से पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ मानत किया है, इसलिए तुम समझदार हो, तुम्हें क्या समझाए।
ये परवाना कहाँ का है भाई साहब?
हाँ धीर सिंह, हम एक बात तो भूल ही गए थे। बात यह है धीर सिंह कि कंचनपुर के महाराज कंचन सिंह जी ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है जिसमें हमारा दुश्मन भीम सिंह भी वहां आ रहा है, इसलिए हमें वहां जाना जरूर है और मत्स्य वेदन करना है। लेकिन भाई साहब मेरी जगह, अरे आपकी जगह अगर रूप कुमार को भेज दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। आज रूप कुमार हमारा जवान लड़का हो चुका है, इसलिए उस स्वयंवर में रूप कुमार को भेज दिया जाए। नहीं, हम खुद जाएंगे क्योंकि हमारा पुराना दुश्मन भीम सिंह भी वहां आ रहा है और मत्स्य वेदन हम स्वयं करेंगे। अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन आप ऐसा मत कर लेना कहीं दूसरी शादी करके आ जाए। नहीं धीर सिंह, हमने मरने वाली महारानी से वचन लिया है और दिया है कि हम तुम्हारे मर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगे। ठीक है भाई साहब, जाइए।
अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बुढ़े राजा ने तीर मारा है,
तीर मारा है।
अरे भाई देरी किस बात की है, लाओ लाओ राजकुमारी को लाओ वरमाला लेकर और महाराज के गले में वरमाला डाल दी जाए।
प्रणाम स्वामी।
हाँ अब देरी किस बात की भाई, यहाँ से हमारा छकड़ा तैयार किया जाए, अब हम चलना चाहते हैं। लेकिन ये शादी आपने हमारी करी है, हमने मरने वाली महारानी से वचन दिया था और दिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो कि भाई माल सुना नजर आता है, इसलिए बच्चों को भी माँ का प्यार मिल जाएगा, हम शादी कर ही लेते हैं।
धीरे चलो सुकुमार, कुमार चित्रा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, कुमार चित्रा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, कुमार चित्रा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देशी देशी के राजा जो आए, देशी देशी के राजा जो आए, कर करके सोना सिंगार, सिंगार चित्रा प्यारी, कर करके सोना सिंगार, सिंगार चित्रा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, कुमार चित्रा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार।
हाँ भैया, हमें यहाँ से रवाना होना चाहिए,
चलिए स्वामी।
आओ प्रिय। प्रिय
कहिए,
ये महल तुम्हारे लिए है?
स्वामी
हाँ।
ये महल कुछ पुराना पुराना नजर आता है।
पुराना है?
हाँ, और हमारी दासी ने भी कहा है कि इसमें पहले वाली महारानी मर चुकी है, मैं तो रहना पसंद नहीं करूंगी।
ठीक है, ये सोचना तुम्हारा गलत है कि पुरानी महारानी इस महल में मरी है। मरने वाले कोई वापस नहीं आते हैं। फिर भी तुम्हारे दिल में अगर इस प्रकार की शंका है तो हम तुम्हारे लिए नई बागगोटी तैयार करते हैं।
क्यों नहीं, नए नए हैं इसलिए हमारे लिए नया महल होना जरूरी है।
अच्छी बात है दरबारियों, हाँ महाराज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक नया बागकोटी तैयार किया जाए जिसमें हमारी नई महारानी रहेगी। जैसे आज्ञा महाराज। भैया बसंत।
हाँ भैया।
हमने सुना है कि हमारे पिताजी दूसरी शादी करके आ गए हैं, इसलिए चलना चाहिए और नई माताजी के पैर छू करके आना चाहिए। प्रणाम माताजी।
प्रणाम माताजी।
क्या राजकुमार है, बड़े ही सुंदर है। दासी।
हाँ महारानी जी।
ये अभी अभी दोनों छोकरे आए थे, ये किसके?
ये आप ही तो।
हट, आए तो मुझे दो तीन नहीं हुए, मेरे कहाँ से आए?
आप तो नहीं, आपके सौत के हैं।
अरे मेरे नहीं और सौत के हैं, होंगे सौत के लेकिन मेरे तो नहीं है। दासी, ये बड़े वाले का नाम क्या है?
रूप कुमार।
क्यों नहीं, जैसी सुंदरता वैसा ही रूप है, क्यों नहीं, रूप के साथ में नाम भी रूप कुमार रखा गया है। दासी, अब हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
कहिए महारानी जी।
सुनो, देखो दासी, बहुत ही दर्द हो रहा है हमारे दिल में। हमें क्या मालूम था इन महलों के अंदर बड़ा ही सुंदर राजकुमार है, नहीं तो हम इस बुड्ढे के साथ में हम शादी नहीं करते। चले चबिला चर चरा, अरे मिलता है महबूब इसके साथ विशाल में लज्जत आती। और भी सुनो, लज्जती आती खूब जो होता दो दो बाणी, ये गुलगुला सा बदन है आफताब पे जानी। दासी, और भी सुनो।
हाँ महारानी जी।
अरे राजा में क्या खाक रखी, आधी ढली जवानी, उठ गई तकदीर मेरी, ना मिला मुझे दिल जानी। दासी।
हाँ महारानी जी।
खैर भगवान रखेगा जी नसीबा मेरा जगेगा जी, खैर भगवान रखेगा जी नसीबा मेरा जगेगा जी। दासी।
हाँ महारानी।
कभी ना कभी मौका मिले तो ये गुलगुला सा बदन बंदी के हाथ लगेगा जी। दासी।
हाँ महारानी जी।
इधर तो देखो तो गुलाब की कली खिलती जाती है, उधर देखो तो बुढ़े बुढ़े की गर्दन हिली जाती है, और खुल्ल खुल्ल करता ही रहता है दिन रात। मेरे तो तकदीर ही फूट गए थे।
मैं क्या करूं? ये तो आपको सोचना था। सोच और समझ कर वरमाला डालना था। आपने तो देखा नहीं और वरमाला डाल दी। लेकिन महारानी जी, बुड्ढा हुआ तो क्या हुआ? दिलवाला है दिलवाला।
चल चुप रहे, बकवास करती है मेरे सामने दासी।
हाँ महारानी जी।
तू तो बड़ी अच्छी है रे।
हाँ मैं तो अच्छी हूँ।
तो तू ये काम करेगी?
हाँ करूँगी।
तुम जाओ और जाकर रूप कुमार को कहना के महलों में महारानी जी ने तुम्हें याद किया है।
जैसी आज्ञा महारानी जी।
बेटा रूप, बेटा बसंत। हाँ चाचा जी।
हाँ चाचा जी।
हमने तुम्हें कल शस्त्र विद्या सिखाई थी, क्या तुमने सीख ली? हाँ चाचा जी, हमने सीख ली है। लेकिन बेटा एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी करके आए हैं। अभी भी बसंत कह रहा था कि चाचा जी मुझे गेंद खेलने का शौक है, एक बार मुझे आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा तो देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, नई माता के मेलों की तरफ गेंद खेलने के लिए मत जाना बेटा।
अच्छी बात है।
जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अरे वो काने?
अरे त्या है रे,
ले चला गेंद खेल ले।
अरे कहाँ खेलें दे?
अरे वही जो बागकोटी के सामने बगीचा है, उस बगीचा में खेलेंगे।
अरे नहीं यार, वहाँ चल के खेलेंगे अपन तो, नई माता दी थे मेलों में।
हाँ तो चल चल।
हाँ तो चलो।
कबड्डी खेलेंगे अपन।
अरे कबड्डी नहीं खेले यार,
खोखा खेलेंगे।
हाँ
तो क्या खेलेंगे?
गेंद खेलेंगे।
गेंद खेलेंगे।
हाँ
लेकिन गेंद का है?
गेंद मैं लेते आया हूँ।
लाओ फिर, कहाँ है गेंद?
हाँ ये मेले नानी माँ की दादली थी गेंद है।
अरे वाह, तेरे नानी माँ की घाघरी की गेंद है।
हाँ
कोई बात नहीं,
जान लड़का
लाओ ये गेंद मेरे को दो, अगर ये गेंद घूम जाएगी तो मैं ढूंढ करके लाऊंगा।
हाँ मैं तुम्हें
मैं अपना नाम लिख देता हूँ।
लिख दो।
अरे वो गेंद तो मेरे हाथों से चली गई है।
मेरी देन दे दो, मैं तो देन दूंगा। मेरी देन दो, मैं तो वही दूंगा, मेरी नानी नाती दादली की देन दूंगा।
अरे भाई तुम चिंता छोड़ो, मैं तुम्हें इस गेंद के बदले सोने की गेंद दे दूंगा।
नहीं मैं तो वही दादली की देन दूंगा।
चांदी की गेंद दे दूंगा।
मैं मुझे चांदी की देन दी।
अच्छा भाई बसंत, अच्छा छोड़ो, हम तुम्हारी गेंद ला करके देते हैं।
जल्दी लाओ नहीं तो।
अच्छा भाई बसंत, बाग गेंद लेने के लिए जाता हूँ।
भैया छीक सामने की बुरी, कभी ना खाली जाए। जाओ कलंक से बैठ या जान निकाली जाए।
भाई बसंत तुम चिंता ना करो, मैं गेंद लेकर के ही आऊंगा।
अच्छी बात, जल्दी आना।
हाँ मैं जाता हूँ, मैं गेंद लेकर के आऊंगा भैया।
क्यों तोतले, तेने कभी सोने की चिड़िया देखी?
अरे यार सोने की चिड़िया तो मेरी जिंदगी में नहीं देती यार, कहाँ है वो?
देख वो सामने बैठी।
कहाँ यार, कहाँ? अरे यार
वाली देन ले हाँ अरे मेरे देन
शायद माता जी का माल यही है, यही चल करके अपनी ज्ञान ले लेना चाहिए।
तो श्री माता जी श्रोमणि तो दयावंती गुणी रूपी हाथ जोड़ विनती करे पुत्र तुम्हारो रूपी। हाथ जोड़ विनती करे पुत्र तुम्हारो रूपी जेद हमारी गिरी आन कर मेलन में ये मैया प्रमोदनी किंकनी उठाई कर गेंद लाई मैया कृपा दृष्टि कर गेंद हमें को दीजे दिलाए कर मैया। गेंद है बंदी हमारो गेंद है बंदी हमारो बात भी नहीं किसी दिदारो शीश नवाऊ अरे छैया ऊपर करो अनुग्रह मैया
ये माता जी मेरी गेंद अचानक ही आपके मालूम आ गई है, कृपा दृष्टि करके मुझे मेरी गेंद वापस दीजिए।
गेंद?
हाँ।
कौन सी गेंद और कैसी गेंद, यहाँ कोई गेंद नहीं आई। हमारी दासी
हाँ।
बिचारी को 100 तक गिनती ही नहीं आते, और भला वो गेंद उठाकर लाए। नहीं
नहीं माता जी, हमारी गेंद आपके इन महलों में है।
राजकुमार
हाँ।
हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
क्या कहना चाहती हो?
सुनो राजकुमार।
हाँ माता जी।
देखो तुम्हें गेंद भी मिल जाएगी और जो हम कहते हैं उसे तुम मानोगे।
हाँ माता जी, अगर मानने योग्य बात होगी तो अवश्य मानेंगे।
तो सुनो।
हाँ।
जरा पास आओ सुनो, मैं तुम पे कुर्बान, एक छोड़ दो गेंद लो मेरी बान दिली जान। राजकुमार
हाँ।
तुम्हें एक गेंद के बदले में दो दो गेंद मिल जाएगी।
माता जी मुझे दो नहीं, एक ही गेंद चाहिए और मेरी ही गेंद चाहिए।
राजकुमार
हाँ।
मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ। सुनो
हाँ।
एक दफे अपने मुंह से मुझे महारानी कह के बुला दो।
ये क्या कह रहे हो माता जी?
हाँ सुनो राजकुमार
हाँ।
नगीना नूर का बनकर चिढ़ाता है नगीने को, निगाहें नाज से जख्मी बनाता है हसीनों को, अब नहीं टिकता चोली में शरारत का खजाना, ये जिगर में टीस देता है जवानी का दीवाना ये। जानते हो इसके अंजाम क्या होगा?
क्या होगा? सजा या मौत?
हाँ।
इससे तो और कुछ नहीं होगा।
हाँ राजकुमार,
लेकिन मुझे ये सजा भी मंजूर है।
मंजूर है?
मैं जा रहा हूँ।
चले जाओ। दासी
हाँ महारानी जी,
फौरन जाकर महाराज को बुला कर लेके आओ।
महाराज चलिए।
कहो दासी किस लिए आई हो? तो
महाराज महारानी जी के पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है।
क्या महारानी के पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है?
हाँ
हम जल्दी से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले वाली महारानी भी इसी प्रकार मारी गई है, उनके पेट में भी मीठा मीठा दर्द होता था।
जल्दी चलिए।
हाँ तुम चलो दासी, हम आ रहे हैं। आहु, आहु।
कहो महारानी, किस दर्द ने तुम्हें घेरा है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ।
आप हमसे मत बोलिए।
क्यों?
हम आपसे बात नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करोगे?
पहले ये बताइए, शादी आप कर लाए या किसी गैर के लिए?
अरे शादी तो आदमी खुद अपने लिए करता है, दूसरों के लिए थोड़ी करता है क्या?
नहीं स्वामी, ये शादी किसी गैर के लिए की गई है।
नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो महारानी?
मैं सत्य बात कह रही हूँ।
ये सत्य नहीं असत्य है।
देखो महाराज, कान खोल के सुन लो। अर्ध रात्रि का समय था, राजकुमार इन महलों के अंदर आए थे और मुझसे छीना झपटी की है।
क्या बक रही हो तुम ये?
मैं सही बक रही हूँ।
हमारा राजकुमार ऐसा नहीं कर सकता है।
क्या
इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है?
सबूत? मेरे पास में फेटा और कटारी है।
फेटा और कटारी?
हाँ।
अरे फेटा और कटारी तो बाजार से भी आ सकती है।
नहीं
नहीं आ सकती है। आ सकती है
स्वामी।
है?
दासी से पूछ लीजिए।
दासी
आइए महाराज।
तुम सच सच बताओ दासी, क्या हमारा बेटा रूप कुमार यहाँ आया था?
हाँ महाराज, आज रात को आए थे।
और क्या किया उसने?
और महारानी जी से छीना झपटी की।
छीना झपटी की है?
हाँ।
और उस हराम जादे की ये मजाल कि वो महलों में आया और आते ही महारानी के साथ छीना झपटी की है। दरबारियों बुलाओ उस नीच हराम जादे को हमारे सामने। इसी आज्ञा महाराज। प्रणाम पिताजी। राम करते हुए तुम्हारे मुंह में आग नहीं लगी? अरे क्या संसार में अरे पिता ऐसी लिए पुत्र को जन्म देता है? अरे नीच कुलंधाती कुलगार, ऐसा नीच कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अरे तू होता ही मर जाता, अरे तू होता ही मर जाता तो आज हमारे दिल पे ये बात नहीं गुजरती। अरे हराम जाने, तेरी माँ बता तेरे क्या लगती है? पिताजी मैंने अपनी माँ को वही समझा है जो हनुमत ने समझी थी सीता को और गांडीवधारी अर्जुन ने समझी थी गीता को, इसी प्रकार मैंने अपनी माँ को माँ समझा है। अरे गीता समझ करके चरणों में फूल चढ़ाने की कृष्णा के फूल चढ़ाने के लिए गया था। आज हम तुम्हें वो सजा देंगे रूप कुमार, संसार वाले ये कहेंगे कि महाराज बस करो बस करो। अरे घोड़े को पकने से पहले ही फोड़ देना चतुराई है, दुश्मन को जिंदा छोड़ना ये महान बुराई है। असली तुम्हें हम सजाए मौत देते हैं। दरबारियों ले जाओ इस हराम जादे को हमारे नजरों के सामने से, किसी भी हालत से इसकी आंखें निकाल करके लाओ और हमारी महारानी को ला करके दे दो। जैसी आज्ञा महाराज। भैया बसंत, इन सारी बातों को छोड़ो, मेरे किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ था।
नहीं भैया, कूद के चढ़ जाऊंगा फांसी के तख्ते पे। भैया मैं पहले आपसे मौत माँ की गोद में सो जाऊंगा। भैया मैं पहले आपसे भाई गांडम ने भाई किरा में गदन कटे, मुझे कोई गम नहीं।
नहीं भैया,
जला दो वापिस ले चलो दरबार में।
दरबारियों ऐसे आम जाति को यहाँ लेकर के कौन आया है?
पिताजी मैं।
कौन? बसंत।
हाँ।
आओ बेटा बसंत आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम अपने साथ इस हराम जादे को क्यों लेकर के आए हो?
पिताजी मेरे भाई ने और आपके खून ने क्या ऐसा कर्म क्या जो ऐसी सजा दी इसको?
बेटा रूप, बेटा बसंत, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने रूप कुमार को क्या सजा दिया है। ये बात हम तुम्हें नहीं कह सकते हैं बेटा, कहते हुए हमें दम चलता है। बेटा बसंत आओ, तू मेरा हो जा, मेरा बन जा। देख ये राजपाट का मालिक मैं तुझे ही बना दूंगा। आओ मेरे पास आ जाओ।
नहीं पिताजी, वो बाप ही क्या जिस बेटे से प्यार नहीं, दगा करे पति से वो सरस्वती मार नहीं, दीक्षा ना दे गरीबों को वो राजा कंगाल है, भाई भाई का साथ ना दे वो भाई चांडाल है। मैं धीरता पे कहता हूँ सस्ता आकाश की तेज शंकर का घटेगा ऊंचा कैलाश की, चांद अपनी चांदनी सूरज जमाना छोड़ दे, ये नहीं हो सकता बसंत रूप का साथ छोड़।
ओ हराम जोदी, भाई की बेरड़ी की तुम्बे हो।
ठीक क्यों, मैं अपना कहूँ दिन राग उसी का गाऊंगा, मांगे से कब मिलता है दिन मांगे ही मिल जाएगा।
अरे बारे तानवीर कर्ण के मुंह, हम जानते हैं कि तुम एक ही बेलड़े के तुम्बे हो, तू भी कड़वाही निकलेगा। अरे साहब किस बोले, क्या तुम्हें मैंने इसीलिए जिंदा रखा था?
पिताजी मुंह को संभालिए।
हम अच्छी तरह से जानते हैं।
मैं अपने भाई के लिए मैं इस राज और पाट को नफरत की ठोकर मारता।
ले जाओ उस चांडाल को मेरी सामने से, इन दोनों हराम जादों को ले जाओ एक ही हथपड़ी में पहना करके, और इनको वो इससे जादो जो हमने रूप कुमार को सुनाया है। हेलो, प्रणाम भाई साहब। आओ भाई धीर सिंह आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन भाई साहब मैं इन दोनों बच्चों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बैड़ी देख रहा हूँ, इन दोनों बच्चों ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी इतनी बड़ी कठोर सजा सुना दी है?
भाई धीर सिंह, ये सब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है जिसकी वजह से इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बैड़ी है। लेकिन भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ, अपने लाड़ले बेटे से पूछ लो कि इन्हें कौन सी गलतियां की है।
बेटा रूप, प्रणाम चाचा जी, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं बेटा कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी इतनी बड़ी कठोर सजा तुम्हें मिली है? पिताजी आपने सच्ची कहा था कि जो नहीं माने बड़ों की सीख वो ले मांगे कटोरा भीख। आपने मुझे मना तो किया था कि नई माता के महलों की तरफ गेंद खेलने के लिए मत जाना, लेकिन चाचा जी मैं कुछ दोस्तों के साथ चला गया, अचानक मेरे हाथ से गेंद नई माता जी के महलों में चली गई और नई माता जी ने मुझे वहां बुलाकर के मेरे साथ आभद्र व्यवहार किया और मेरे साथ ये छंद लगाया गया है। तो बेटा तुम मरने वाली माँ की सौगंध खा करके कहो कि हाँ तुम सच्चे हो। हाँ चाचा जी, मैं मरने वाली माता की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं सच्चा हूं।
तो भाई साहब मैंने तो अपने लाडले से पूछ लिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं।
भाई धीर सिंह, इस हरामजादे ने इसकी होने वाली मां को बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए इसको इतनी बड़ी कठोर सजा सुनाई है।
तो क्या भाई साहब आपने महारानी की बातों के ऊपर विश्वास करके अपने ही पुत्र को फांसी की सजा सुना दी? क्या अपना ही पुत्र अपनी मां के साथ ऐसा कार्य कर सकता है?
ओ धीर सिंह, तुम हमें शिक्षा मत दो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस नीच ने जरूर कोई हरकत की हो।
भाई साहब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, भाई साहब नारी वो वर्ग है, भाई साहब नारी वो वर्ग है, गाय ना इसकी चाल में, अरे धोखा और फरेब भरा है इसके बाल बाल में। इसी नारी ने बाबा आदम को जन्नत से निकलवाया था, इसी नारी ने पूरन जैसे बेटे का कत्ल करवाया था, इसी नारी ने राम और लक्ष्मण को बन बन भटकाया था, जो पड़ा मर्द इस नारी के चक्कर में उसका मुकद्दर टूटा है। भाई साहब नार नहीं नवरंगी है दसरंगी है, ढके तो सारी खुद को ढक दे वरना नारी खुद बा खुद नंगी है। मर्द को चाहिए कि आए ना इसकी चाल में, अरे धोखा और फरेब भरा इसके बाल बाल में। इसलिए भाई साहब बहन बच्चों की दोनों की प्राणों की भीख मांगता हूं, मुझे आप इनके प्राण भीख में दे दो।
और उसे प्राणों की भीख को नफरत की ठोकर मारता हूं। और जुल्म जाली में राजा तेरा जुल्म जाता ना है। अरे सर कसों के दिल को दुखा कर बदुआ लेता है तू, मांगता हूँ भिक्षा तो मारता है ठोकर तू। चलोगे सीधे न्याय तो बंदा सर झुकाएगा, वरना भरे दरबार में धीर सिंह खंजर चलाएगा। अरे यू घनघोर बादल गरजते हमने बहुत देखे हैं, यू जंगल में उछलते हुए खरगोश हमने बहुत देखे हैं। एक नाला दरिया से कहता है कि उमलनासी को, अरे जाजा तू जैसे बरसाती मेंढक टर्राते हमने बहुत देखे हैं। ठीक है भाई साहब, आपके मुंह से भगवत की बू आ रही है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मुंह से भगवत की बू आ रही है या नहीं। तुम एक सेनापति हो, ये हमारी आज्ञा है कि तुम यहां से निकल जाओ। ये तो मैं भी जानता था भाई साहब, भलाई और बुराई में यही मतभेद होता है। ये लियो तुम्हारा चमड़े का बेल्ट नहीं दिल कैद होता है। लेकिन भाई साहब इन दोनों बच्चों को फांसी की सजा तो आपने सुना दी है, लेकिन फांसी के तख्ते पर आप और आपकी वो पार्वती नहीं महारानी, तुम दोनों ही आना, नहीं तो इन दो दो पैसे के चमचों को मत भेजना, नहीं तो बेचारे ही बाल बच्चों से दूर हो जाएंगे।
ठीक है तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ हराम दादो।
बेटा रूप, बेटा बसंत, अब हम यहां नहीं रह सकते हैं, इसलिए चलो कई जंगलों में चल करके तुम्हारा पेट पालन करूंगा बेटा, चलो।
चाचा जी।
हाँ बेटा।
इस कड़क कड़ाती धूप में चेहरे भी पड़ गए काले, जरा नीचे नजर डाल के देखो, पाँव में पड़ गए भी छल्ले।
बेटा बसंत, हाँ तुम चिंता न करो, तुम इसी वृक्ष के नीचे बैठना, मैं सामने कहीं पानी नजर आ रहा है, मैं पानी लेकर के आता हूँ।
हाँ चाचा जी।
अच्छी बात है, मैं पानी लेकर के आता हूँ।
भैया रूप।
हाँ भैया बसंत।
ये देखो शेर की आवाज आ रही है।
चलो यहाँ से भाग चलते हैं।
हाँ चलो।
बेटा बसंत, बेटा रूप, आओ बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आया हूँ, आओ पानी पियो। बेटा रूप, बेटा बसंत, क्या इस संसार में मेरे बेटे भी नहीं रहे, क्या मुझसे बिछड़ गए? अरे जिनके लिए मैं भाई से दुश्मन बना वो ही बच्चे यहां से चले गए हैं, अब इस संसार में मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है।
हेरो देवर,
तुम कौन हो काली काली मूर्ति, क्या तुमने ही मेरे बच्चों को खाया है?
नहीं, मैं तुम्हारी भाभी रूपावती हूँ।
भाभी रूपावती?
हाँ।
लेकिन इस वक्त तुम यहाँ?
देवर क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, दारानगर का ताज रूप के मस्तक पे रख दिया?
हाँ भाभी साहब, लेकिन क्या करूँ, इस संसार मेरे बच्चे नहीं है तो किसके मस्तक पे ताज रखूँ?
देवर कौन कहता है तुम्हारे बच्चे इस संसार के अंदर नहीं है, तुम्हारे दोनों बच्चे जीवित है।
तो भाभी माँ मैं दूसरी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, इस संसार में दोनों बच्चे अगर जीवित है तो मैं एक रोज तारानगरी का ताज रूप कुमार के मस्तक पे अवश्य रखूंगा।
भैया मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं।
ए मेरी प्यारी मीना।
क्या है मेरे प्यारे तोते?
अपने वृक्ष के नीचे दो प्राणी बैठे हुए हैं।
हाँ।
ये बड़े दुखी नजर आ रहे हैं।
हाँ।
इसलिए देख तो मुझे एक फल बनना याद है।
कौन सा फल है?
जो कोई सुबह होते ही उसको खा लेगा,
हाँ,
वो प्राप्त काल होते ही वो राजा बन जाएगा।
मेरे झाड़ के ऊपर भी एक फल है, वो फल जो कोई खाएगा वो कष्ट उठा के राजा बनेगा।
तोले टपक
टपको
टेंटड़े
के दो फल गिरे हैं, जो सवेरा होते ही राजा बनेगा वो मैं भैया को खिला देता हूँ, जो कष्ट उठा के राजा बनेगा वो मैं खा लेता हूँ। भैया भैया उठो, लो भैया एक फल तुम खा लो, एक फल मैं खा लो।
आ!
भैया बसंत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आया। क्या तुम्हारे मुंह से नीले नीले झाग तुम्हें किसी काले सांप ने काट खाया भैया? लेकिन भैया अब मैं अकेला क्या करूंगा भैया? ठीक है, इस प्रकार रोने से क्या फायदा है, सामने जो नगरी दिखाई दे रहा है वहां चल करके कुछ आग ला करके भैया की दाह संस्कार करना चाहिए।
अरे महामंत्री, हमारे यहाँ का राजा होती था वो कहती था कि जो कोई भी प्रातकाल मिलती था उसे पकड़ के यहाँ का राजा बनाती था। वो देखो सामने से कोई नौजवान आती था, इसे पकड़ती था। ए भाई इधर आती था।
क्यों भाई, क्या बात, अरे कौन हो?
मेरी बात सुनती था। यहाँ का राजा का हुक्म होती था, प्रातकाल जो मिलती था उसे यहाँ का राजा बनाती था, इसलिए तुम हमको नजर आती था, हम तुमको राजा बनाती था।
लेकिन भाई तुम लोग हो कौन?
हम तो हैं जनाने प्रधान जी।
ओ हिंजड़े हो।
हाँ मेरी जाको पे जाना, हाय मेरी जाको पे जाना, हाय मेरी जाको पे जाना।
टाइम क्या हो रहा है?
मेरी जा पौने बारह, हाय मेरी जा पौने बारह, हाय मेरी जा पौने बारह।
इस राज्य का नाम क्या है?
मेरी जा बसी पटाना, हाय मेरी जा बसी पटाना, हाय मेरी जा बसी पटाना।
यहाँ की राजा का नाम क्या है?
यहाँ का राजा का नाम कुछ भी नहीं होती था।
अच्छा, इस नगर का नाम कंचनपुर है।
कंचन राजा के नाम से विख्याती था।
आज से इस राज्य का नाम रूपनगर रखा जाएगा।
अच्छी बात होती था। प्रधान जी चूहा आया, चूहा इधर। प्रधान जी जब तुम एक चूहे से ही डर गए तो शेर मारने क्या जाओगे? अरे तुम नहीं जानती था महामंत्री, शेर तो बहुत बड़ा होती था, शेर तो नजर आती था, चूहा तो छोटा सा चीज होती था, किधर भी घुस जाती था।
अरे वो धोबाल।
अजी क्या है धोबी राजा?
अरे वो धोबाल।
हाँ
चल तो चल, कपड़ा धोबा चला।
चलो जदी मारी बात सुनो, गदेड़ो कटे गदेड़ो। अरे देखो तो गदड़ी तो घनी आवारा वेगी।
गदड़ी नहीं बोल रही है?
हाँ
आवारा होगी,
आवारा वेगी घनी फरती फरे भरन भट भरन भट।
अरे सुन री धोबन सुन, सुनियो।
हाँ
अरे सुन री धोबन सुन।
हाँ
सुनरी धोबन सुन, अरे गदड़ी कपड़े अब धुली। सुनरी धोबन सुन, अरे गदड़ी कपड़े अब धुली। लाल कदेड़ा दसवारा, लाल कदेड़ा दसवारा, अरे गदड़ी हो गई आवारा। अरे पाल्टी वाले ने भी ध्यान नहीं है कि कलवा चौधरी जा रहा तो रोड बाजार साफ रखा है। देख तो ये थारो गदेड़ो लीली लीली द्रोपड़ी काने भूषण ढो होने पियो। देख कुरे 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 कुरे, अरे अरे गदड़ा तारी धोबन बुलावे।
अरे बारे थाने खून कर दी तो।
अरे ये तो आदमी को पिल्लो है राण।
पुलिस पुलिस।
अरे पुलिस ने के करे राण, भारी बात तो सुन ले। पुलिस पुलिस की कर रही है जो खून तय करियो
थोड़ी
थोड़ी नबज चाल रही है मरने की हो दारू को हो दवा की एक ही दारू है थोड़ो सो दारू पता नहीं चुको जागो
भैया रूप।
अरे भैया यहाँ तो रूप को नहीं यहाँ तो को रूप है कर भैया कई नाम है थारो
बसंत कुमार
अरे
कुमारा पर कुमारा पर
अरे बारे
नहीं
तो
छत्री
ओरे बारह तारीख की छत्री
बरसात में ताने
लला गोटी रे
नहीं वो नहीं
छत्री
वो नहीं
तो
हम तो बड़े बड़े मूछे वाले
ठाकर साहब का ठाकर साहब का कर भैया थारा कोई को नहीं संसार में
कोई नहीं
जी के कोई को नहीं उके मुंह हूं तो भैया तने तो मैं बसंतियो कांगरा तने बसंत कुमार नहीं कांगा बाकी दो एक कसी नाम होवे कचरिया बगदिया मेत्या धन्या पेमा थिमा नथिया है मां तने बसंतियो कांगा है
अच्छी बात
छोरो मारो
छोरो मारो
छोरो मारो
छोरो मारो
एड़ी दू लेवड़ा
एड़ी दीदा
हे कसनी एड़ी दू
अरे जाओ जाओ
छोरो मारो सा
मारी बात सुनो
कई के
आप ही
फैसलो करला
हां के छोरो कण को है
छोरो मारो
ई तो बन जाओ जज साहब
हां
ने मु बन जाऊं फरियादी
हां
छोरो बन जाएगा चपड़ासी
हां ठीक है
जज साहब
हां बोलो क्या बात है
मेरे एक धोबी है
धीरे बोलो अदालत घबराती है
जज साहब मेरे एक धोबी है
तो क्या 10-15 करना चाहती हो
अरे अकबरवा जज साहब मेरे एक धोबी राजा है मैं उनकी एक दुगनिया रानी हूँ धोबी और धोबन के बीच लड़का एक है धोबी कहता है लड़का मेरा है और दुगनिया कहती है लड़का मेरा है अब आप ही फैसला कीजिए जज साहब
ठीक है अदालत 5 मिनट का समय लेती है अपनी अकल के घोड़े दौड़ा करके फैसला मंगवाती है हेलो हेलो वेरी गुड टिंड क्या हेलो 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 गोल गोल मिंगली हेलो 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 हेलो
जज साहब क्या सोचा
हाँ अदालत की अकल के घोड़े वापस आ गए हैं अदालत की अकल के घोड़े वापस आ गए हैं और ये फैसला दिया है कि बच्चा तो औरत को होता है आदमी को नहीं है इसलिए ये बच्चा उस औरत का है धुबनिया का बुलाओ उस हरामजादे धोबड़े को का
अभी है बुलाती ये रहा
अरे रान कान तो छोड़ दे मारो
कान कहीं छोड़ दे
हाँ।
चलो कपड़ा धोवान चला
कपड़ा धोवान चला चल
हाँ, चलो अरे भी सेठ जी आया सेठ जी
हाँ कही रहा
अपना छोरा ले जाइ रहा
ले जाइ रहा
हाँ
भाई जी भाई कणी वाता कर रही है
अरे करवा दे रे बेटा तो इतवार की छुट्टी है ने वाता करवा दे था बिने
अरे लाकड़ा कल्या का राफड़िया मछणिया भरू
हां और नहीं तो खाई
उणो तो
हां
ई मारा चोरान ले जा रिया
ले जा मत ले जा मत ले जा मत अरे चोरा तारो तो मांडो हो गयो रे तारा तो मांडो हो गयो रे मु तो टौं पर टौं रह गयो रे अब आज तक मारो मांडो नहीं होयो है ले तने तो मु डाल दू नदी में ए
पिताजी ये तुमने क्या किया
अरे आज ही तो करियो है बीनणी अरे देखो वो तो छोटो सो छोरो थो अरे मु थारो असली पति तो मु
सुनो
हां
की मारा पति हो
हां
तो मां ने रूप बसंत को कहन के दो तो मु आपने पति स्वीकार कर लूंगा
रूप बसंत को किस्सो
हां
ठीक है मु महाराज ने जाने के दूंगा महाराज आपकी नगर में रूप बसंत को किस्सो कोई केवे है उन्हें मु 5 गांव जागीर में दूंगा 5 गांव जागीर में दूंगा ठीक है परसों बाद तुमने आज मेरे भाई का नाम तुम्हारे मुंह से सुना है इसलिए जो भी कोई रूपसन का किस्सा सुनाएगा उसे हम आधा राज देंगे और 12 गांव जागीर में देंगे अरे ये चोरो आ गयो अपना कपड़ा फेर रहे। अरे धोबन ये चोरो आ गयो कपड़ा फेर
रहे। अरे मांडो हो गयो उनको तो।
अरे तेरा मांडो हो गया भाया।
हां
बना रे बाग में झूला गालिया रे बना रे मारा बनाने मारा बनाने झूलन दीजे वाला जे गजरा मारा बनाने झूलन दीजे वाला जे बढ़ेड़ा।
सुनो जी
हां
अबार उजाना प्रधान आयो जो ऐलान देन गियो है।
कई ऐलान लगा रही तो
के रूप पसंद की केणी कोई भी केगा मने आदो राज मिली
तो आपने तो एक काम करा आपा
आने याद है।
हां मने तो याद कोनी लीला मजनू सुना था श्री फरियाद सुना था।
अरे रवा दो अरे छोरा तने याद है।
हाँ माता हाँ याद है।
याद है तो सुना देगा तू।
जाओ आज दरबार में समाचार दे ना हो
महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मारा बेटा की बहू है वह रूप पसंद को किस्सा सुनावे है पर आपका मेलू मारा घर तक पर्दो होनो छवे पर्दा ही पर्दा में आई और मारा बेटा की बहू वह आपने कहानी सुनाई। ठीक है भाई हमारे महलों से तुम्हारे घर तक हम पर्दा लगवा देंगे।
कहो भला मना
है
कहो ये गलब गलब कहीं बोले कहो अन में तेल कशन कूड़े होएगा।
अरे राण तू तो नज गंडकड़ी की तरह है।
गंडकड़ी की
तरह तेरी रब ने बना दी जोड़ी रे मारे पाजे गंडकड़ी जोड़ी रे। हाँ बना दी जोड़ी रे मारे पाजे गंडकड़ी जोड़ी रे। तो महाराज यह हमारा बेटा की बू है जो किस्सो सुनाई। तुम्हारे बेटे की बू क्या होती है जाने कोई मुंह न मारे वाह न वड़के हु न वड़की वाह। अच्छा तुम्हारे बेटे की लाड़ी। हाँ बस लाड़ी लाड़ी तो अब किस्सा प्रारंभ किया जाए। ये आवाज तो शायद मेरे भाई की होना चाहिए। भैया बसंत
भैया रूप
आओ भैया।
अरे बारे मु तो दो दो छोरा की बाई वेगी रे लल्ला।
अरे मु भी तो दो छोरा को बाप बन गयो रे। मु तो दो छोरा को बाप बन गयो रे। भैया अपन सब मिल गए हैं लेकिन अभी तक हमारे चाचा जी नहीं मिले हैं। शायद मेरे बेटे रूप और बसंत ने मुझे नहीं पहचाना है। बेटा रूप बेटा बसंत
चाचा जी
आओ बेटा आओ बेटा आओ मेरे गले लग जाओ बेटा।
चाचा जी आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए
थे? नहीं बेटा तुम मुझे छोड़ करके चले गए थे। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। चलो भगवान की इच्छा हुआ कि आज हम सभी एक समय और एक ही जगह मिल गए हैं। बेटा रूप बेटा बसंत तुम यहाँ का राज चलाओ और मैंने मरने वाली महारानी से प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे मर जाने के बाद मैं धारा नगरी का ताज रूप कुमार के मस्तक पर रखूंगा। चलो बेटा रूप कुमार हम तुम्हें
जो आज्ञा
धारा नगरी का ताज तुम्हारे मस्तक पर रखेंगे। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। 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 मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान।